पाठ 31 अध्याय 21। पिछले हफ्ते हम लेव्य व्यवस्था 21 में थोड़ा आगे बढ़ गए और उन पहली कुछ आयतों का मुख्य जोर मृत्यु और मृत्यु की अशुद्धता से था। आइए स्पष्ट करें कि यह अंश इज़राइल के लेवियों और पुजारियों से बात कर रहा है, न कि आम जनता से। इसलिए जब आप सोचें कि ये आयतें आप पर कैसे लागू होती हैं तो इसे ध्यान में रखें। हां, मैं जानता हूं कि नए नियम में यीशु में विश्वास करने वालों को पुजारी कहा जाता है, लेकिन यह हमसे ज्यादा आध्यात्मिक स्तर पर बात कर रहा है, क्योंकि जब हम बच जाते हैं तो हम शारीरिक रूप से यहूदी नहीं बन जाते। मृत्यु और उसकी धार्मिक अशुद्धता एक मुद्दा है, क्योंकि परमेश्वर मृत्यु से घृणा करता है। यह उसके लिए घृणित है क्योंकि मृत्यु असामान्य है। समाज में 80 या 90 वर्ष की औसत जीवन अवधि को सामान्य कहते हैं और बाइबल कहती है कि मनुष्य के लिए आदर्श जीवन अवधि 120 वर्ष है। एक व्यक्ति जो अधिक उम्र में मरता है उसे आमतौर पर प्राकृतिक मृत्यु कहा जाता है। उम्र के कारण उसका शरीर बस खराब हो गया है, लेकिन प्रभु के लिए दो शब्द प्राकृतिक और मृत्यु एक साथ नहीं है। मृत्यु और मानव शरीर का परिणामी क्षय आदम और हव्वा के जीवन में पाप के प्रवेश के कारण हुआ। पाप के परिणाम स्वरूप अशुद्धता होती है। इसलिए जैसे पाप मानव जाति के लिए असामान्य है, वैसे ही मृत्यु भी है, और परमेश्वर इसे ठीक उसी तरह से मानता है। इसीलिए हमारे पास वे लोग हैं जो ईश्वर के सबसे करीब हैं। उनके पुजारी जब उनकी मृत्यु के करीब होने की बात आती है तो उन्हें कठोर प्रतिबंध दिए जाते हैं। ये परमेश्वर की ओर से निर्दयता या सहानुभूति की कमी का कार्य नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रदर्शन और चित्रण है कि वह मृत्यु को कितनी गंभीरता से देखता है, जो कि उसके ब्रह्मांड में कभी नहीं थी। उसके छुराए हुए लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि हमें केवल शारीरिक मृत्यु का सामना करना है। हमारी आत्माएं प्रभु के साथ रहेंगी और हम कभी भी इन कमजोर शरीरों को याद नहीं करेंगे जो इस समय हमारी सेवा करते हैं। आइए इस अध्याय का कुछ भाग पुनः पढ़ें। लेव्य व्यवस्था 21 का 1-6 को दोबारा पढ़ें।
पद 4 ने हमेशा इब्रानियों के लिए समस्याएं पेश की हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि कोई पुजारी अपनी पत्नी की मृत्यु पर उसकी देखभाल नहीं कर सकता, शारीरिक जैविक अर्थ में वे आधा दर्जन रिश्तेदार जिनकी मृत्यु पर पुजारी को देखभाल करने की अनुमति है, माता पिता बहन भाई बेटा बेटी, उसके मांस और खून के रिश्तेदार हैं। एक पत्नी, हालांकि आम तौर पर एक लैव्य व्यवस्था महिला होती है, उसे अपने पुजारी पति का मांस और खून नहीं माना जाता था। मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूं, जिन रिश्तेदारों की देखभाल करने की पुजारी को अनुमति थी वे आनुवंशिक रूप से पुजारी से जुड़े हुए थे। लेकिन एक पत्नी आनुवंशिक रूप से पुजारी से जुड़ी नहीं होती है। वास्तव में तोरा इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि कोई भी इजरायली कितने करीबी रक्त संबंधी से विवाह कर सकता है, और पत्नी को उस सीमा से बाहर होना चाहिए, अन्यथा इसे अनाचार माना जाएगा।
मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग पहले से ही सोच रहे होंगे कि उत्पत्ति 2:20 में बताए गए सिद्धांत के बारे में क्या कहा जाए कि जब एक पुरुष और एक स्त्री विवाह में एक साथ जुड़ जाते हैं तो वे एक तन बन जाते हैं। यहां हमारे विश्वास में परिपक्वता का एक और उदाहरण है, ताकि हम शास्त्रों में दी गई चीजों के आध्यात्मिक और भौतिक अर्थों के बीच अंतर कर सकें। सामान्य ज्ञान और मात्र अवलोकन हमें बताता है कि शाब्दिक और शारीरिक रूप से एक आदमी और उसकी पत्नी अपने विवाह अनुष्ठान के अंतिम शब्दों पर जादुई रूप से एक साथ नहीं जुड़ते हैं, और उस बिंदु से आगे एक ही पैर, हाथ, नाक, कान या शरीर के किसी अन्य अंग को साझा नहीं करते हैं, बल्कि यह एक शरीर आध्यात्मिक अर्थ में है और एक मानसिक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसे एक विवाहित जोड़े को अपनाना चाहिए, और एक हद तक यह ईश्वरत्व की पूर्ण एकता का एक रूपक है।
इब्रानी ऋषियों ने स्वीकार किया कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक पुरुष और उसकी पत्नी एक ही हैं, इचात, लेकिन वे इसे इसके भौतिक और जैविक अर्थ से अलग करते हैं। इसलिए कानून को इस तरह लागू किया गया था कि चूंकि कानूनी नियमों के सभी मामलों में एक आदमी की पत्नी एक करीबी आनुवंशिक रिश्तेदार नहीं हो सकती थी, इसलिए उसे परिवार के सदस्यों के समूह से भी बाहर रखा गया था, जिसे एक पुजारी उसकी मृत्यु पर देख सकता था। बाद में इब्रानी इतिहास में इस निषेध को कुछ शास्त्रियों द्वारा संशोधित किया गया था, जिन्होंने निर्धारित किया था कि चूंकि अब्राहम और याकूब व्यक्तिगत रूप से अपनी पत्नियों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, इसलिए इसे लैव्य व्यवस्था पुजारी के लिए भी अनुमति दी जानी चाहिए। उनके फैसले के पीछे का तर्क दिलचस्प है। उन्होंने निर्धारित किया कि भले ही एक पुजारी अपनी पत्नी की मृत्यु में शामिल होने से बहुत अधिक और गंभीर अशुद्धता से संक्रमित हो जाएगा, फिर भी ऐसा करना उसका उचित कर्तव्य था। हालांकि केवल तभी होना था जब पुजारी और उसकी पत्नी के पास उसे दफनाने के लिए कोई अन्य करीबी परिवार न हो।
अब मुझे यह तर्क काफी दिलचस्प लगता है, क्योंकि यह कमोबेश इस विचार को मूर्त रूप देता है कि विश्वासियों के रूप में हम शुद्ध किए गए हैं और हमें हर उस चीज से अलग रहना है जो अशुद्ध है।
दूसरा कुरिन्थियों 6 का 17, इसलिए उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, प्रभु कहते हैं, और जो अशुद्ध है उसे मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। पवित्र शास्त्र में मृत्यु से अधिक अशुद्ध कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें प्रेम और दया के लिए इस दुनिया के अशुद्ध लोगों के पास जाने और उनके पास परमेश्वर का वचन ले जाने का आदेश दिया गया है जो उद्धार लाता है। सुसमाचार संदेश। दूसरे शब्दों में ऐसा नहीं है कि सुसमाचार प्रस्तुत करने का प्रेमपूर्ण और दयालु कार्य करके हम किसी तरह से शुद्ध और अशुद्ध के नियमों से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि यह है कि हमें सुसमाचार के लिए व्यक्तिगत रूप से अशुद्ध लोगों के संपर्क में आने का जोखिम उठाना है। इब्रानी ने पुजारी से आग्रह किया कि यदि आवश्यक हो तो वह व्यक्तिगत अशुद्धता का जोखिम उठाने का चुनाव कर सकता है, यदि यह उसकी मृत पत्नी की देखभाल करने के लिए आवश्यक और प्रेमपूर्ण और दयालु कार्य है।
मैं आपको बताता हूं कि मैं चाहता हूं कि कुछ मायनों में अनुष्ठान शुद्धता के बारे में यह सिद्धांत ऐसा न हो। मैं चाहता हूं कि हमारे द्वारा सही या दयालु या करुणामय कार्य करने से सभी परिणाम अच्छे ही होंगे। सही काम करना अक्सर हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों, हमारी नौकरियों, हमारी सेवकाई और बहुत कुछ के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन यहोवा पर किस तरह का भरोसा या किस तरह का प्यार हम दिखा रहे हैं अगर हम केवल तभी अच्छा करते हैं जब यह हमें अच्छे परिणाम देता है। विश्वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि यीशु का जीवित जल हर समय हम पर बरसता है। हम कभी कभी एक अर्थ में इस दुनिया के अशुद्ध और अपवित्र लोगों के पास जाने और उनके संपर्क में आने के कारण अपवित्र हो सकते हैं। हम आध्यात्मिक रूप से बर्बाद हो चुकी वेश्या पर हाथ रखकर या मृतक की देखभाल करके या भ्रमित और दुखी समलैंगिक को सांत्वना देकर परमेश्वर के अनुष्ठान शुद्धता निर्देशों का उल्लंघन कर सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि यीशु का जीवित जल हमें घटना घटने से पहले ही धोकर स्वच्छ कर देता है। मैंने कई मौकों पर कहा है कि पाप और धार्मिक अशुद्धता के बारे में ईश्वर के नियमों के अस्तित्व का एकमात्र कारण मानव जाति की गिरी हुई अवस्था है। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं और दुनिया का ताना बाना पाप और अभाव से और अधिक संतृप्त होता गया, अब किसी व्यक्ति विश्वासियों सहित के लिए अपने जीवन में किसी बिंदु पर पाप न करना लगभग असंभव है, भले ही उसका इरादा हमेशा ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और अच्छा करना हो। मैं अक्सर कोरी टेन बूम का उदाहरण देता हूं, जो यहूदियों को छुपाती है और इसके बारे में अपने सरकारी अधिकारियों से झूठ बोलती है, क्योंकि यह एक ऐसा काम है जिसे अधिकांश लोग पहचान सकते हैं। तोरह कभी भी झूठ बोलने के लिए अपवाद नहीं बनाता है, झूठ हमेशा एक पाप है। फिर भी कोरी ने एक बड़ा अच्छा काम करने के लिए, निर्दोष यहूदियों की जान बचाने के लिए, उस पाप और उसके अनंत परिणामों को अपने ऊपर ले लिया। अगर उसे मसीहा द्वारा छुरा या नहीं गया होता तो झूठ बोलने का पाप अभी भी अनंत काल तक उसके सिर पर रहता। लेकिन क्योंकि उसने यीशु पर भरोसा किया था, उसे इसके लिए माफ कर दिया गया। मुद्दा यह है कि झूठ अभी भी झूठ था, भले ही यह अच्छे के लिए था,
प्रभु ने इसे अपने खिलाफ अपराध के रूप में देखा और उनके न्याय की मांग है कि इसके लिए दंड दिया जाना चाहिए। दया और करुणा का हमारा प्रयास ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता को नकारता नहीं है। जिस पुजारी ने अपनी मृत पत्नी की सेवा की, वह सिर्फ इसलिए अपवित्र होने से नहीं बचा क्योंकि उसने एक प्रेमपूर्ण और दयालु कार्य किया था, बल्कि उसने स्वेच्छा से धार्मिक रूप से अशुद्ध होने के आध्यात्मिक और शारीरिक परिणामों को एक बड़े अच्छे के रूप में स्वीकार किया।
और वैसे भी समझिए कि इस दुनिया के अशुद्ध लोगों की सेवा करने और उनके साथ एक होने में बहुत बड़ा अंतर है। हमें कभी भी परमेश्वर के सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, न ही सत्य को कमतर आंकना चाहिए, न ही उनके साथ सेवा करने के लिए अपने व्यवहार में अशुद्ध लोगों में से एक बनना चाहिए। हम अशुद्ध लोगों के साथ एकता में नहीं आए हैं। संत पौलुस विशेष रूप से अशुद्ध लोगों के साथ अवैध यौन संबंधों से बचने का उदाहरण देता है, क्योंकि सेक्स अपने आप में एक पवित्र मिलन है। स्वच्छ और अशुद्ध लोगों के बीच इस तरह का मिलन बनाना तेवेल यानी भ्रम कहलाता है। यह अनुचित मिश्रण है, या जैसा कि आधुनिक चर्च पसंद करता है, असमान जुए, जिससे एक आस्तिक को हमेशा बचना चाहिए।
पद 5 में एक दिलचस्प निर्देश है। इसमें कहा गया है कि पुजारी का सिर चिकना नहीं होना चाहिए, न ही उसकी दाढ़ी के किनारे की वृद्धि को हटाया जाना चाहिए और न ही उसे अपनी त्वचा पर घाव करना चाहिए। इनमें से प्रत्येक कार्य मूर्ति पूजक कनानी अंतिम संस्कार अनुष्ठान थे जिन्हें यहोवा ने निषिद्ध किया था। अब वास्तव में इन निषेधों को पहले भी पुजारियों के लिए हर समय पालन करने के लिए एक सामान्य नियम के रूप में निर्देशित किया गया है, न कि केवल अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन यह वास्तव में केवल यह बताकर थोड़ा सा विवरण जोड़ रहा है कि शोक के औपचारिक समय के दौरान भी पुजारियों को ये काम नहीं करने थे।
एक त्वरित अनुस्मारक के रूप में यहां जो समझाया जा रहा है वह यह है कि पुजारी का सिर अर्थात सिर का मुकुट मुंडाया नहीं जाना चाहिए और न ही कोई बाल उखारा जाना चाहिए। दाढ़ी के साइड ग्रोथ का उल्लेख आज हम साइडबर्न कहते हैं। इब्रानी पुजारियों के सिर पर पूरे बाल और पूरी दाढ़ी होनी चाहिए जो साइडबर्न के साथ जुड़ी हुई हो। इस निषेध का एक कारण यह है कि चूंकि ये वही नियम सामान्य इब्रानी आबादी पर भी लागू होते हैं, इसलिए उन लोगों द्वारा इनका पालन कितनी अधिक कठोरता से किया जाना चाहिए। जैसा कि पद 6 में कहा गया है, परमेश्वर के हवन को अपने परमेश्वर के भोजन के रूप में चढ़ाएं। यदि कोई ईश्वर का पुजारी बनने जा रहा है जो बलिदान के साथ ईश्वर के पास जाता है, तो उसके नियमों का पालन और भी अधिक ईमानदारी से किया जाना चाहिए। कम नहीं, यीशु में विश्वास करने वाले के रूप में अपनी स्थिति के बारे में सोचें और इसे एक मिनट के लिए अपने अंदर समाहित होने दें। हमारा मोचन इतनी बड़ी कीमत पर खरीदा गया, कोई जेल से बाहर निकलने का कार्ड नहीं है, ये कोई स्थायी मूलिगन भी नहीं है हमारे गोल्फ खिलाड़ियों के लिए। इससे हमारा उद्धार हमारे प्रभु के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। जैसा कि हमने तोरह का अध्ययन किया है, यह स्पष्ट हो गया है कि प्रभु ने उन लोगों से अपेक्षा नहीं की थी जो उद्धार नहीं पाए थे कि वे उनके नियमों और आदेशों का पालन करें। तोरह उनके लिए नहीं था, बल्कि यह वे लोग थे जिन्हें उन्होंने अलग रखा और अपने लिए बचाया, जिनसे उन्होंने अपने नियमों और विनियमों का पालन करने की मांग की, और जो लोग उनके और भी अधिक निकटता के साथ धन्य थे, उनके पुजारी इस प्रकार और भी अधिक परिपूर्ण होने की उम्मीद की गई थी।
वैसे उसी आयत में होम बलि को उनके परमेश्वर का भोजन कहने के संदर्भ पर ध्यान दें। परमेश्वर के लिए भोजन? क्या परमेश्वर भोजन खाते हैं? खैर, बात यह है कि पवित्र शास्त्र जितना प्रेरित है, इसे लिखने वाले लोग ही थे। यह वे लोग थे जिन्हें इसकी जरूरत थी, और वे लोग ही थे जिन्हें यह बताया जा रहा था। इसलिए इसे उनके समाज और संस्कृति के लिए सामान्य शब्दों में लिखा और बोला गया था। व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उस युग की हर जात संस्कृति में अपने देवताओं को होम बलि देने का अभ्यास किया जाता था। एक वेदी का उपयोग करना और एक देवता को बलि चढ़ाना इज़राइल को मूसा और माउंट सिनाई से बहुत पहले से पूरी तरह से पता था, और वे इससे कम की उम्मीद नहीं कर सकते थे क्योंकि यहोवा ने उन्हें तोरह दिया था।
इस अंश में भोजन के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द लेकेम है, और लेकेम एक बहुत ही सामान्य और प्रचलित इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ भोजन है, लेकिन यह रोटी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि रोटी उनका प्राथमिक भोजन था। इब्रानी सोच में जब हम गैर यहूदी ईसाइयों द्वारा इतनी आसानी से अपनाए गए वाक्यांश का उपयोग करते हैं, जीवन की रोटी, इसका अर्थ जीवन का भोजन था। यहां इब्रानी भाषा में बोलने का एक सामान्य तरीका बताया गया है, और आप शर्त लगा सकते हैं कि किसी न किसी तरह से इसराइलियों ने वास्तव में परमेश्वर को उन बलिदानों को भोजन के रूप में खाते हुए देखा होगा, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने परमेश्वर को होम बलि के धुएं की सुगंध को सुगंधित करते हुए देखा था जो आकाश में उड़ रही थी। वे जिन मूर्ति पूजक संस्कृतियों से बहुत परिचित थे, उन्होंने सिखाया कि ये होम बलि देवताओं का भोजन है, कि अगर उन्हें भोजन की बलि नहीं मिलती तो देवता सचमुच भूखे रह जाते, और समय के साथ कुछ लोग भोजन की कमी से कमजोर भी पड़ सकते थे। परमेश्वर ने इज़राइल को अब मूर्ति पूजक न घोषित करने का यह मतलब नहीं था कि उन्होंने मूर्ति पूजकों की तरह सोचना या मूर्ति पूजकों की तरह व्यवहार करना बंद कर दिया। निश्चित रूप से मिस्र से दूर और व्यवस्था के अधीन रहने के कई सौ वर्षों के बाद केवल एक ईश्वर होने की अवधारणा और उसके विशुद्ध आध्यात्मिक गुणों को किसी भौतिक पोषण की आवश्यकता नहीं है ने इब्रानियों के बीच मजबूती से जड़ें जमा ली। लेकिन अगर हम ईमानदारी से बाइबल पढ़ते हैं तो हम कई ईश्वर मूर्ति पूजक शैली की सोच के निरंतर संदर्भों को अनदेखा नहीं कर सकते जो इसराइलियों के भीतर बने रहे।
आइए अध्याय 21 को थोड़ा और पुनः पढ़ें।
लैव्य व्यवस्था 21 का 7 को पुनः पढ़ें अंत तक। अगला नियम है पुजारी द्वारा ऐसी महिला से विवाह करने पर रोक जो अधिकांश अनुवादों के अनुसार वेश्या या तलाकशुदा हो। वास्तविक इब्रानी शब्द जिसका आमतौर पर वेश्या के लिए अनुवाद किया जाता है वह है जोना वा हल्लाला, और इसका शाब्दिक अर्थ है वेश्यावृत्ति द्वारा अपमानित। इसलिए यह नहीं कहा जा रहा है कि वेश्या से विवाह न करें, बल्कि यह कहा जा रहा है कि ऐसी महिला से विवाह न करें जो वेश्यावृत्ति के किसी भी कृत्य से अपवित्र हो गई हो। यहां स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है और रब्बियों ने इसके बारे में लिखा है। संक्षेप में कहें तो एक महिला को तब तक वेश्या नहीं माना जाता था जब तक कि वह नियमित रूप से किसी तरह का वेश्यावृत्ति या यौन अनैतिकता का अभ्यास न करती हो। एक महिला जो एक या दो बार व्यभिचार करके पाप में गिर गई थी उसे वेश्या नहीं माना जाता था, बल्कि वह पादरी से शादी करने के योग्य होने के लिए आदर्श और शुद्ध चरित्र की नहीं थी। क्या आपको अंतर दिखता है? परमेश्वर ने यह सिद्धांत निर्धारित किया है कि एक निश्चित प्रकार का बुरा कार्य करना, ऐसा कार्य जो आपके चरित्र या नियमित जीवन शैली का विशिष्ट नहीं है, आवश्यक रूप से आपको उस विशेष प्रकार की बुराई के साथ एकता में होने के रूप में नहीं पहचाना जाता है, लेकिन यह एक फिसलन भरी ढलान है। कभी कभी किसी निश्चित पाप में भाग लेने से लेकर उसे अपनी जीवन शैली बनाने तक का समय नहीं है। फिर भी यदि वह बुरा व्यवहार वास्तव में आपके विशिष्ट चरित्र और इच्छाओं और नियमित व्यवहार का संकेत है तो आप पहले से ही उस बुराई के साथ एकता में आ चुके हैं और आपको उस पाप के साथ पहचाना जाना चाहिए। यह दोहरी बात लग सकती है, लेकिन संत पौलुस हमें विचार के लिए और भी भोजन देता है। पौलुस हमें एक कुरिन्थियों 6:9 में बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न समलैंगिक, दस न चोर, न लोभी, न पियक्कर, न गाली देने वाले, न ठग परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। संत पौलुस के इस उद्धरण पर लैव्य व्यवस्था के सिद्धांतों को लागू करने से हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि यदि आप मूर्ति पूजा का एकाकी कार्य करते हैं तो आप प्रभु द्वारा मूर्ति पूजक कहलाते हैं और छुटकारे के लिए अयोग्य ठहराए जाते हैं। नहीं, कोई व्यक्ति जो कुछ बार शराब पीता है वह बाइबल के मानकों के अनुसार स्वतः ही शराबी कहलाने लगता है। बल्कि यह तब होता है जब आप खुद को इन चीजों के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, तब आप पर यह लेबल लगता है। ऐसा तब होता है जब मूर्ति पूजा जीवन का एक तरीका बन जाती है, जब शराब पीना और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करना आपके लिए आदर्श बन जाता है, जब यौन अनैतिकता आपकी जीवन शैली बन जाती है, और यही मानक संत पौलुस द्वारा बताए गए अन्य सभी अपराधों पर लागू होता है। यह तब होता है जब आप किसी बुरे व्यवहार के साथ इतने सहज हो जाते हैं कि परमेश्वर यह निर्णय लेता है कि आप उसके साथ इस तरह से झुर गए हैं कि वह आपको और उस पाप को एक साथ देखता है। आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा उस पाप के नाम के साथ एक हो गई है। जैसा कि मैंने कहा, यह परमेश्वर का निर्णय है, हमारा नहीं। यह वह है जो निर्णय लेता है कि आध्यात्मिक रेखा कब पार की गई है, लेकिन अक्सर यह स्पष्ट होता है कि उस रेखा को पार करने का सबसे बड़ा खतरा किसको है या पहले ही पार कर चुका है। और यह हमारे लिए भी काफी हद तक स्पष्ट है कि क्या हम उस समूह में शामिल होने के योग्य हैं। मैं इस मुद्दे पर थोड़ा समय दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी आईने में देखें और खुद से पूछें कि क्या यह संभव है कि आप और कोई पाप एक हो गए हैं, या आप समय समय पर उस पाप में गिर सकते हैं और ईमानदारी से उसका पश्चाताप करते हैं। मैं आपको यह इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि अगर आपने कभी खुद को पाप की इन जीवन शैलियों में से किसी एक के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन यीशु के नाम पर पश्चाताप किया है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अब आप उस पाप के लेबल से मुक्त हैं, कम से कम किसी के द्वारा जो मायने रखता है, अर्थात प्रभु। लेकिन अगर आप उस पाप में आनंद लेना जारी रखते हैं या इसके लिए बहाने बनाते हैं और इसे पाप के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हैं या इसे छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, अगर आप यह मानने से भी इनकार करते हैं कि आप उस पाप के साथ एक हो गए हैं, तो यह एक और चर्चा का विषय है, लेकिन कम से कम यह गंभीर और खतरनाक मामला है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम में से जो लोग अतीत के भयानक अपराध बोध के साथ जी रहे हैं और जिन्होंने उन तरीकों से वास्तव में पश्चाताप किया है, वे परमेश्वर के शालोम में मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जैसे यीशु ने हमें पाप से मुक्त किया है, वैसे ही उसने हमें लेबल से भी मुक्त किया है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, आभारी होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसी कानून में पादरी को तलाकशुदा महिला से शादी करने से भी मना किया गया था। ध्यान दें कि दो चीजें, वेश्यावृत्ति के कृत्य से अपमानित होना और तलाकशुदा होना, एक तरह से एक साथ जोड़ दी गई हैं। इसके पीछे एक कारण था। व्यवस्था विवरण 24 का एक, जब कोई पुरुष किसी स्त्री को लेकर उससे विवाह करता है और वह उसके प्रति अनादरपूर्ण हो जाती है क्योंकि उसने उसमें कुछ अभद्रता पाई है, और वह उसके लिए तलाक का प्रमाण पत्र लिखकर उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल देता है। तोरह में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए केवल एक ही कारण बताया गया है कि उसने यौन अनैतिकता का कार्य किया है, उसने उसमें कुछ अभद्रता पाई है का यही अर्थ है, जो वास्तव में उतनी स्पष्ट टिप्पणी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अंग्रेजी में अभद्रता के रूप में अनुवादित शब्द इब्रानी में एरवा है, और एरवा का शाब्दिक अर्थ है नग्नता। एरवा एक यौन शब्द है। हमारी आधुनिक भाषा में इसका बेहतर अनुवाद होगा, उसे पता चला कि उसने यौन अनैतिक कार्य किया है। यीशु के समय से थोड़ा पहले ही हिलेल के शिष्यों ने यह कहकर तलाक को कम प्रतिबंधात्मक बनाने का प्रयास किया कि यह पद यौन संबंधों के अलावा कई और प्रकार की बेवफाई पर लागू होता है। उस समय तक केवल यौन बेवफाई का कुछ रूप ही तलाक के लिए कानूनी आधार था। अतः यहां विचार यह है कि किसी पुरुष को ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जिसने अपने शरीर को बेचकर या वैवाहिक बेवफाई के माध्यम से अनैतिक यौन क्रियाकलाप करने में सक्षम होने का प्रमाण दिया हो। अब महिलाओं, बाइबल की कहानियों में एक छोटी सी अंतर्दृष्टि है जिस पर ध्यान देना चाहिए। कल के पुरुष आज से बहुत अलग नहीं थे। अगर कोई पुरुष यह तय करता है कि वह अपनी पत्नी से थक गया है और उसे तलाक देना चाहता है, तो वह बस उस पर बेवफाई का आरोप लगाता है। उसे इसे साबित करने की जरूरत नहीं थी, उसने बस उस पर आरोप लगाया और बस इतना ही। वास्तव में कानून के अनुसार अगर वह इसे साबित करने में सक्षम था तो उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था, और आपको बाइबल में तलाक के कई मामले मिलेंगे। लेकिन इसके कारण मृत्युदंड के बहुत कम मामले मिलेंगे।
पिछले सप्ताह हमने एक बच्चे के अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य के बारे में बात की थी और कहा था कि उनका उचित सम्मान न करना मृत्यु दंड के योग्य है। यहां पद 9 में हमें इस बात का एक अच्छा उदाहरण मिलता है कि सम्मान न करना क्या हो सकता है। एक पुजारी की बेटी जो यौन अनैतिकता का कार्य करती है उसे जलाकर मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह खुद से ज्यादा लोगों को अशुद्ध करती है। उसने अपने पिता को अशुद्ध किया है।
हमारे समाज में यौन अनैतिकता को अनदेखा किया जाता था, अब इसका जश्न मनाया जाता है। परमेश्वर के लिए उनके लोगों में से किसी एक के यौन अनैतिक होने से ज्यादा गंभीर कुछ भी नहीं है। आग से मौत की सजा देने की विधि सबसे बुरे पापों के लिए निर्धारित सबसे बुरे सजाओं में से एक है।
मुझे कुछ मिनट का समय देकर कुछ बातों को परिप्रेक्ष्य में रखना है तथा कुछ संबंध स्थापित करने हैं। मुझे आशा है कि विशेष रूप से पिछले कुछ सप्ताहों ने हमें इस बात की बेहतर समझ दी है कि यहोवा कितना पवित्र है और वह अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेगा, और यह उसकी न केवल अपेक्षा है बल्कि उसकी मांग है कि जो लोग उसके प्रति निष्ठा का दावा करते हैं वे स्वयं पवित्र बने।
हमने अध्यादेशों और नियमों की एक लंबी श्रृंखला देखी है जिन्हें आम तौर पर कानून कहा जाता है, जो पवित्रता को व्यक्त करने वाले मानवीय व्यवहारों और इसके विपरीत पवित्रता के विरुद्ध व्यवहारों को ध्यान से बताते हैं। बेशक जो बात आम तौर पर कानूनों की सूची से ज्यादा औसत बाइबल विद्यार्थी को प्रभावित करती है वह है उन कानूनों को तोड़ने पर होने वाले परिणामों, दंडों की गंभीर प्रकृति। इन परिणामों और दंडों को अक्सर श्राप कहा जाता है, और एक साथ लिया जाए तो कभी कभी इसे कानून का अभिश्राप भी कहा जाता है।
अध्याय 20 में और यहां फिर से अध्याय 21 में हमने पापों को बुरे और बदतर के पदानुक्रम में क्रमबद्ध किया है और फिर निर्धारित दंड। और याद रखें कि सभी पाप परमेश्वर की पवित्रता, इच्छा और नियमों के विरुद्ध उल्लंघन है। इससे पहले लैव्य व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के बलिदानों के माध्यम से हमें सिखाया गया था प्रत्येक बलिदान का उद्देश्य क्या था। प्रत्येक प्रकार के लिए आवश्यक बलि पशु और बलिदान प्रोटोकॉल के कुछ अन्य नियमों के माध्यम से हमें निर्णायक रूप से दिखाया गया था कि सामान्य चर्च सिद्धांत, जो कहता है कि सभी पाप समान हैं, पाप पाप है कि कैंडी बार चुराना परमेश्वर की नजर में हत्या से अलग नहीं है, ये बिल्कुल भी धर्मशास्त्रीय रूप से सही नहीं है। वास्तव में कुछ पाप दूसरों की तुलना में बहुत बुरे और अधिक खतरनाक हैं, और यह प्रत्येक के लिए निर्धारित दंड के स्तर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।
और यह हमें चौंका देता है कि वर्षों से दादा समान, दयालु, क्षमाशील, शांतिपूर्ण ईश्वर के बारे में पढ़ाए जाने के बाद यही ईश्वर अपने खिलाफ किए गए कुछ सबसे गंभीर अपराधों के लिए लोगों को जलाकर मार डालने की मांग करेगा, कि वह अपनी पवित्रता की रक्षा और बचाव के लिए लोगों को तुरंत मार डालेगा और हमेशा के लिए अपनी उपस्थिति से दूर कर देगा। और जब वह कहता है कि उसकी उपस्थिति में रहने के लिए किसी को परिपूर्ण होना चाहिए तो उसका मतलब परिपूर्ण होता है।
बात यह है, जो लोग अपने जीवन का प्रभुत्व यीशु को नहीं सौंपते हैं वे अभी भी इन परिणामों का सामना करते हैं। निश्चित रूप से इस दुनिया में उन्हें उन अपराधों के लिए सजा के रूप में नहीं मिल सकता है जो परमेश्वर के कई बाइबल कानूनों के समानांतर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय के मामले को मानव सरकारों को सौंप दिया है, जिनमें से लगभग सभी ने परमेश्वर की कानून और व्यवस्था, अपराध और दंड की व्यवस्था के खिलाफ जाने का फैसला किया है और अपनी खुद की व्यवस्था स्थापित की है, और हम हर दिन उन परिणामों के साथ जीते हैं।
हालांकि व्यवस्था के परिणाम श्राप उन लोगों को भुगतने होंगे जो यीशु को नहीं जानते हैं, या तो इस जीवन में या परलोक में या दोनों में परमेश्वर के सीधे हाथ से।
याद रखें कि यहां लेव्य व्यवस्था में परमेश्वर ने इसराइल से कहा था कि यदि तुम मेरे निर्देशों का पालन नहीं करोगे और मेरे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा नहीं चलाओगे तो मैं करूंगा, मैं अपने हाथों से उन लोगों को काट डालूंगा जो मेरे विरुद्ध अपराध करते हैं।
मैं आपको जिस बात की ओर ले जा रहा हूं वह यह है, मसीह तोरह के लेखक, कानून के लेखक यह आदेश नहीं दे सकते कि उनके नियमों को तोड़ने के लिए ऐसे परिणाम की आवश्यकता हो और फिर उसे लागू न करें। हमें कितना सम्मान होगा, या स्पष्ट रूप से हमें होना चाहिए एक ऐसे ईश्वर के लिए जो चीजों को करने का आदेश देता है, कहता है कि ये आदेश शाश्वत हैं, और फिर कहता है ओह इसे भूल जाओ, मैंने अपना विचार बदल दिया है। कृपया सुने कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कानून के सबसे गंभीर या सबसे छोटे उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का हिसाब दिया जाएगा और हर एक के लिए भुगतान किया जाएगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वह उल्लंघन पुराने समय में हुआ था, नए समय में हुआ था या 5 मिनट पहले हुआ था, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी मूर्ति पूजक या आजीवन आस्तिक ने उन उल्लंघनों को किया था। मेरे द्वारा किए गए हर पाप, मेरे द्वारा उल्लंघन किए गए हर कानून के लिए भुगतान किया जाना चाहिए, कोई अपवाद नहीं। अन्यथा परमेश्वर की पवित्रता एक धोखा है, और जब वह कोई आदेश देता है तो वह खोखला और अर्थहीन होता है। अगर मैं अपने पापाए के लिए भुगतान नहीं करता हूं तो कोई और भुगतान करेगा, यही न्याय प्रणाली है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। आपके या मेरे द्वारा यौन अनैतिकता करने के कारण कोई व्यक्ति आग में जलने वाला है। आपके या मेरे द्वारा ईश निंदा करने के कारण किसी को पत्थर मारकर मार दिया जाएगा। लेकिन दुनिया में दया का सबसे अद्भुत कार्य, कानून निर्माता, तोरह प्रदाता, जिसने कानून बनाए और परिणामों का फैसला किया, वह स्वेच्छा से वह व्यक्ति बन गया जो अनगिनत दंड भोगता है, जो आपको और मुझे भुगतना पड़ता है।
जब यीशु उस क्रूस पर लटके हुए थे तो उनके पिता द्वारा उन्हें लाखों बार जलाकर मार डाला। परमेश्वर के क्रोध से आए पत्थरों के भूस्खलन से यीशु को पत्थर मारकर मार डाला गया। उन्हें उनके पिता ने काट दिया, उनके लोगों और उनके पिता से अलग कर दिया। हमारे द्वारा किए गए अनगिनत अपराधों के लिए निर्वासित कर दिया गया, जिनमें से प्रत्येक के लिए उन दंडों की आवश्यकता थी। मेरे परमेश्वर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब वह निर्वासन हुआ तो वह चिल्लाया। उसने उन सभी भयानक परिणामों को सहा, एक एक करके पीड़ादायक, जिसके बारे में हमने पिछले कई महीनों में पढ़ा है और जीवन भर इकट्ठा किया है। वे परिणाम जो उन्हीं नियमों का उल्लंघन करने से आते हैं जिन्हें उसने निर्धारित किया था। और जब वह उन नियमों को बना रहा था तो वह पहले से जानता था कि यह वह स्वयं होगा जो उन लोगों के लिए और उनके स्थान पर कीमत चुकाएगा जो उससे प्रेम करते हैं। अच्छी खबर यह है कि जैसे जैसे हम खुद को लेव्य व्यवस्था के नियमों की नजर से देखते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, और जैसे जैसे हम यहोवा के खिलाफ किए गए भयानक कामों की गंभीरता को देखते हैं, कुछ तो उससे पहले और कुछ उसके बाद, पहचानते हैं कि किसी को उन चीजों की कीमत चुकानी होगी, और किसी को चुकानी पड़ी है और चुकानी पड़ रही है। यीशु में मेरे भाइयों और बहनों, हमने जो किया है और जो हम करते हैं उसके लिए हम आग से बच गए, लेकिन यीशु नहीं बच पाए। और अब छुराए जाने के बाद और हमारे खिलाफ परमेश्वर के न्यायपूर्ण और भयानक निर्णयों का सामना न करने की स्थिति में परमेश्वर के लोगों ने यीशु द्वारा किए गए कार्य को कैसे महत्वहीन बना दिया, जब हमने घोषणा की कि तोरह के उन नियमों का उल्लंघन करने से उत्पन्न होने वाले सभी पाप अब किए ही नहीं जा सकते, कि वे सिद्धांत और आदेश जो उसने स्वर्ग से बनाए थे और उनके उल्लंघन की कीमत चुकाने के लिए धरती पर आए थे, अब अप्रचलित और समाप्त हो चुके हैं। शायद यह सोचना हमें अपने बारे में बेहतर महसूस कराता है कि परमेश्वर ने केवल नियमों से छुटकारा पाकर पाप की समस्या को हल कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। नियम बने रहते हैं और उनके परिणाम भी बने रहते हैं। बस इतना है कि यीशु हमारा विकल्प है। वह उन नियमों के लिए आवश्यक भयानक दंडों का वाहक है।
हमें आज यहां से स्वतंत्र, आभारी, शांत और उसकी आज्ञा मानने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ बाहर जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि इससे हमें कुछ हासिल होता है, बल्कि इसलिए कि हम उसके प्रति ऋणी हैं। हमें यहां से अपनी आंखें खोलकर जाना चाहिए कि कई धोखेबाज चर्च संस्थाएं अब सोचती हैं कि आज्ञाकारिता अब मायने नहीं रखती। फिर भी मसीह ने हमारी हर अवज्ञा के लिए अपनी जान दे दी। तोरह जीवित और अच्छी तरह से है। तोरह के अभिशाप जीवित और अच्छी तरह से हैं। सवाल केवल यह है कि अभिशाप कौन झेलता है। यदि आपने खुद को यीशु को सौंप दिया है तो वह आपके लिए इसे झेलने और आपको मुक्त करने के लिए सहमत हो गया है। आदेशों से नहीं बल्कि परिणामों से मुक्त। यदि आप यीशु की ओर नहीं मुड़े हैं तो जैसा कि लेव्य व्यवस्था में कहा गया है, आपका खून आप पर है। आपको अपने अनंत जीवन के साथ उस कीमत का भुगतान करना होगा और आपको उन सभी दंडों को सहना होगा जिसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं है।
मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह रहा हूं कि इन कानूनों और आदेशों के पीछे निहित सिद्धांतों का जिस सांस्कृतिक तरीके से पालन किया जाता था, आज भी उसी तरह से उनका पालन किया जाना चाहिए। फिर भी कुछ बातें, जैसे कि यौन अनैतिकता की परिभाषाएं और उसके विरुद्ध निषेध, अपने साथी मनुष्य के साथ निष्पक्ष व्यवहार और न्याय, और जो हमारे लिए अशुद्ध है उससे दूर रहना, शब्द का पालन करना, और ऐसे बहुत से प्राचीन नियम बहुत सीधे साधे हैं और संस्कृति से बंधे हुए नहीं हैं। अन्य बातें जैसे कि हम सप्त का पालन कैसे करते हैं, हम बाइबल के पर्वों को कैसे मनाते हैं, समाज में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं, और भी बहुत कुछ जिसके साथ हमें जूझना होगा। हमें सीखना होगा कि उन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। मेरा मानना है कि आपको तोरह सिखाना मेरा काम है। यह वह जगह है जहां इन सभी सिद्धांतों को सिखाया और प्रदर्शित किया जाता है। बस याद रखें कि तोरह हर तरह से यीशु मसीह है जो आपसे बात कर रहा है, जैसा कि नया नियम में कोई भी वाक्य है। आइए अध्याय 21 के अपने अध्ययन पर वापस लौटें।
पद 10 के साथ हम साधारण याजकों से निपटने से आगे बढ़कर महायाजक की ओर बढ़ते हैं। पद आंशिक रूप से महायाजक को परिभाषित करता है। उसे अभिषेक तेल प्राप्त करने वाले के रूप में बोलते हुए वास्तव में पुरोहितीय अभिषेक में, जैसा कि हमने अध्याय 8 में देखा, वह एकमात्र व्यक्ति है जिसका तेल से अभिषेक किया जाता है, नियमित याजकों का नहीं। और पहली बात जिस पर चर्चा की जाती है वह है महायाजक के परिवार में मृत्यु, जैसा कि साधारण याजकों के साथ होता है। तुरंत हम एक अंतर देखते हैं। महायाजक मृत शरीर को छू नहीं सकता, न ही अंतिम संस्कार में भाग ले सकता है, यहां तक कि अपने माता पिता के भी नहीं। वह मृत शरीर के साथ एक ही कमरे में भी नहीं रह सकता, और इसका एक प्रमुख कारण यह है कि महायाजक ही एकमात्र व्यक्ति है जिसे परम पवित्र स्थान में जाने की अनुमति है। इसलिए महायाजक के लिए मृत्यु से कभी भी इतना शुद्ध होना असंभव है कि वह किसी तरह से पृथ्वी पर परमेश्वर के निवास स्थान को अपवित्र न करे। इसके अलावा महायाजक केवल पुरोहित परिवार की कुंवारी लड़की से ही विवाह कर सकता था। अब कोई भी पुजारी कुंवारी लड़की के अलावा किसी से विवाह नहीं करेगा, और न ही अधिकांश नियमित इजरायली पुरुष। लेकिन नियमित पुजारी किसी भी लेव्य व्यवस्था परिवार की लड़की से विवाह कर सकते थे। महायाजक को लेवियों के भीतर केवल कुछ निश्चित पारिवारिक वंशों तक ही सीमित रखा गया था। वह सामान्य पुरोहितों के उच्च वर्गों से आई होगी। इनमें से कुछ बातें जितनी भी कठोर रही हों, पद 16 में पुरोहिताई में सेवा के लिए अन्य कठोर आवश्यकताएं जोड़ी गई हैं, अर्थात दोष वाला कोई भी पुरोहित बलि नहीं चढ़ा सकता। यहां इस्तेमाल किया गया इब्रानी शब्द मम है, और इसका अर्थ है दोष या दोष। इसलिए जिन पुरोहितों के शरीर में कोई भी दोष है वे ईश्वर को बलि नहीं चढ़ा सकते। अब वे पुरोहिताई का हिस्सा बने रहते हैं और उन्हें भोजन का जो भी सामान्य हिस्सा होता है और बलि से प्राप्त धन दिया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया या गरीबी में डाल दिया गया। सूची काफी लंबी है और अधिकतर स्वव्याख्यात्मक है, इसलिए मैं इसके बारे में अपनी टिप्पणियों को सीमित रखूंगा। अंधे और लंगरे शब्दों का मतलब पूरी तरह से अंधा या चलने में असमर्थ होना नहीं है। अंधे का मतलब हो सकता है कि कि एक आंख क्षतिग्रस्त हो गई है और दूसरी बरकरार है। इसका मतलब यह हो सकता है कि पुजारी को मोतियाबिंद है। विचार यह है कि उसकी दृष्टि गंभीर रूप से क्षीण हो गई है। लंगरा का मतलब बुरी तरह लंगराना या एक पैर गायब होना या सामान्य रूप से चलने में कोई भी बाधा हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति अनिवार्य रूप से गंभीर रूप से अपंग था, हालांकि इस शब्द का अर्थ कभी कभी ऐसा हो सकता है।
इसमें टूटी हुई टांग या हाथ का उल्लेख है, क्योंकि वे हड्डियों को जोड़ने का बहुत अच्छा काम नहीं करते थे, और एक कठिन फ्रैक्चर का मतलब आमतौर पर कुछ हद तक स्थायी विकृति होता है। दिलचस्प बात यह है कि झुकी हुई पीठ या बौनेपन से पीड़ित कोई भी व्यक्ति बलि नहीं दे सकता था।
दोषों और विकृतियों के बारे में नियमों का यह पूरा सेट इसलिए है क्योंकि यह पवित्रता के विचार को पूर्णता और सामान्यता के रूप में विकसित करना जारी रखता है। यहां इसे शारीरिक विशेषताओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि जो व्यक्ति प्रभु की सेवा करने जा रहा है उसे शारीरिक रूप से असामान्य या दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। केवल एक दोष ही व्यक्ति को परमेश्वर के पास आने से अयोग्य ठहराता है, क्योंकि पूर्णता की आवश्यकता होती है। हम ये पाएंगे कि क्योंकि कुछ पशुओं को पवित्रता के लिए अलग रखा गया है, परमेश्वर के लिए स्वीकार्य बलिदान के रूप में हमें उनकी शारीरिक पूर्णता के लिए आवश्यकताओं की एक बहुत ही समान सूची मिलती है जो पुजारियों के लिए है। वास्तव में यह सूची लगभग सटीक समानांतर है। बात यह है, ईश्वर को पूर्णता के अलावा कुछ भी नहीं दिया जा सकता। कोई भी पुजारी, कोई भी जानवर और कोई भी साधारण व्यक्ति दोष के बिना ईश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकता। ईश्वर की पवित्रता इतनी पारलौकिक है कि अपूर्णता का संकेत भी उनकी अपरिवर्तनीय पवित्रता को अपवित्र करता है, और वे किसी भी कीमत पर अपनी पवित्रता की रक्षा करेंगे। इस प्रकार यीशु मसीह यीशुआ हामाशियाच का कारण है। लैव्य व्यवस्था के इन सख्त नियमों के पीछे के सिद्धांतों और मांगों को कभी भी रद्द नहीं किया गया है। अगर हम परमेश्वर के पास जाने की आशा करते हैं, उनका अनुग्रह पाना चाहते हैं, तो किसी तरह हमें बिना किसी छोटे से छोटे दोष के परिपूर्ण होना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद कि यीशुआ के बलिदान ने हमारे पापों का इतना पूर्ण प्रायश्चित किया है कि हमारे दोष दूर हो गए हैं। उनके जीवित जल ने हमें इतना साफ कर दिया है कि परमेश्वर के लिए हम परिपूर्ण बेदाग हैं। इसलिए नहीं कि हम परिपूर्ण हैं, इसलिए नहीं कि हमने परिपूर्णता के योग्य हैं, न ही परिपूर्णता प्राप्त की है, बल्कि इसलिए कि हमें परिपूर्ण घोषित किया गया है। इसलिए जैसे इज़राइल के पुजारियों ने सीखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करने के अथाह सम्मान का उचित जवाब उन्हें अपने पूरे मन, आत्मा और शक्ति से प्यार करना है, वैसे ही हमें भी करना चाहिए, और जिस तरह से हम ऐसा करते हैं वैसा ही वे करने का प्रयास करते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित उनकी इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होना जो उन्होंने हमारे लिए किया है, उसके लिए कृतज्ञता से, खुशी से काम करना। हम अगले सप्ताह अध्याय 22 पर आगे बढ़ेंगे।